अक्सर पुराने टीवी सेट पर जब सिग्नल चला जाता था ना, तो स्क्रीन पर काले और सफेद रंग की झिलमिलाहट दिखाई देती थी।
हाँ, वो जो बहुत इरिटेटिंग सी आवाज के साथ स्टैटिक आता था।
बिल्कुल वही। सुनने में शायद अजीब लगे, लेकिन उस झिलमिलाहट का लगभग 1% हिस्सा असल में 13.7 अरब साल पुराने एक महाविस्फोट की बची हुई गूंज है।
अरे वाह, मतलब वो धमाका जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को जन्म दिया।
एकदम सही। तो जब भी उस खाली स्क्रीन को देखा जाता है ना, तो असल में ब्रह्मांड की उत्पत्ति का एक सुराग देखा जा रहा होता है। आज की हमारी ये गहन चर्चा इसी रहस्य के बारे में है।
विषय बहुत ही दिलचस्प है, पृथ्वी और हमारे सौर मंडल की उत्पत्ति कैसे हुई।
हाँ, और हमारे पास कई स्रोत हैं, लाप्लास की नेब्यूलर हाइपोथेसिस जैसी ऐतिहासिक किताबें और बिग बैंग जैसे आधुनिक विज्ञान के सिद्धांत। लेकिन हमारा मिशन सिर्फ ये रटना नहीं है कि पृथ्वी कैसे बनी।
बिल्कुल, हमें ये समझना है कि सदियों से इंसानी सोच ने इस सबसे बड़े रहस्य को कैसे सुलझाया है।
हाँ, प्राचीन यूनान के विचारकों से लेकर सीधे लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर तक का सफर, ये जानना सिर्फ विज्ञान नहीं है बल्कि हमारे अपने अस्तित्व की कहानी है। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं।
तो अगर हम शुरुआत करें तो विज्ञान में कोई भी विचार रातों रात पैदा नहीं होता है ना।
हाँ,
हर नई खोज किसी पुरानी गलती को सुधारने का नतीजा होती है।
सही बात है।
जब हम सौर मंडल की उत्पत्ति की बात करते हैं तो विज्ञान के इतिहास को मुख्य रूप से दो हिस्सों में बांटा जा सकता है, अद्वैतवादी यानी मोनोस्टिक थ्योरी और द्वैतवादी यानी ड्यूअलिस्टिक थ्योरी।
अद्वैतवादी और द्वैतवादी, मतलब अगर इसे बहुत सरल भाषा में समझें
तो मोनोस्टिक का मतलब है सिंगल पेरेंट थ्योरी, जहां ये माना गया कि पूरा सौर मंडल किसी एक ही विशाल तारे या बादल से पैदा हुआ।
अच्छा, और ड्यूअलिस्टिक मतलब?
टू पेरेंट थ्योरी,
बिल्कुल,
जिसमें ये माना गया कि ग्रहों को बनाने के लिए कम से कम दो तारों का आपस में टकराना या इंटरैक्ट करना जरूरी था।
ये सिंगल पेरेंट और टू पेरेंट वाली एनालॉजी से ये पूरा कॉन्सेप्ट एकदम साफ हो जाता है। अगर हम मोनोस्टिक थ्योरी के शुरुआती दौर में जाएं, तो ये वो समय था जब विज्ञान ने ठीक से आंखें भी नहीं खोली थी।
हाँ, प्राचीन यूनानी दार्शनिक बिना किसी दूरबीन के दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे थे।
सही कहा, थेल्स का मानना था कि सब कुछ जल से बना है। एनेक्सिमेनीज ने कहा कि मूल कारण वायु है, और हिराक्लिटस ने अग्नि को उत्पत्ति का स्रोत माना। मतलब ये ऐसा लगता है जैसे कोई बिना रेसिपी के केक बनाने की कोशिश कर रहा हो, या फिर किसी इमारत को देखकर यह अंदाजा लगा रहा हो कि ये सिर्फ सीमेंट से बनी है, क्योंकि उसे आसपास सिर्फ सीमेंट ही दिखाई दे रहा है।
बहुत सही उदाहरण है। वे एक बुनियादी सत्य ढूंढ रहे थे, लेकिन उनके पास भौतिकी के नियम नहीं थे। ब्रह्मांड को वैज्ञानिक नजरिए से समझने की पहली गंभीर कोशिश 1755 में हुई।
1755 में? तब तो न्यूटन के नियम आ चुके थे।
बिल्कुल, जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट ने आइजैक न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियमों का इस्तेमाल करते हुए एक सिद्धांत पेश किया। इसे वायव्य राशि परिकल्पना या गैसियस मास थ्योरी कहा जाता है।
अच्छा, तो कांट का क्या मानना था?
कांट ने कल्पना की कि शुरुआत में ब्रह्मांड एक खाली, ठंडा और शांत स्थान था। उसमें छोटे छोटे देव निर्मित कण बिखरे हुए थे।
देव निर्मित कण? मतलब उन्होंने भगवान को भी इसमें शामिल कर लिया था?
हाँ, उस समय धर्म और विज्ञान काफी जुड़े हुए थे, तो समय के साथ न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण ने अपना काम शुरू किया। ये ठंडे कण एक दूसरे की ओर खिंचने लगे।
और फिर वो टकराए होंगे?
बिल्कुल, जब वे पास आए और आपस में जोर से टकराए तो उस भयंकर टकराव से गर्मी पैदा हुई। कांट का मानना था कि इस टकराव ने एक घूर्णन यानी घूमने की गति पैदा कर दी।
और उससे क्या हुआ?
उससे वो सारा बिखरा हुआ मलबा एक विशालकाय घूमते हुए गर्म गैस के बादल में बदल गया। इसी बादल को उन्होंने नेब्यूला कहा।
लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी तार्किक समस्या नजर आती है ना? कांट के सिद्धांत में गणित की बड़ी गलती थी।
हाँ, आप सही दिशा में जा रही हैं।
मतलब अगर अंतरिक्ष में लाखों कण बिना किसी दिशा के बेतरतीब ढंग से टकरा रहे हैं, तो वे अचानक एक ही दिशा में एक परफेक्ट गोले की तरह कैसे घूमने लगेंगे?
बिल्कुल,
ये तो ऐसा हुआ कि किसी चौराहे पर 100 गाड़ियां अलग अलग दिशाओं से आकर टकरा जाएं, और उस दुर्घटना के बाद वे सब मिलकर एक गोल चक्कर में शांति से चलने लगें। ऐसा तो नहीं होता ना?
एकदम सही, और यही वो बिंदु है जहां कांट की परिकल्पना धड़ाम से गिर जाती है। भौतिकी में एक नियम होता है, कोणीय संवेग का संरक्षण यानी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम।
हाँ, मैंने इसके बारे में पढ़ा है।
इसका सीधा सा मतलब है कि अगर कोई चीज घूम नहीं रही है तो वो बिना किसी बाहरी बल के अचानक एक ही दिशा में तेजी से घूमना शुरू नहीं कर सकती। उन्होंने इस नियम का पालन नहीं किया।
तो मतलब गणित के इस सख्त नियम ने कांट के सिद्धांत को खारिज कर दिया?
हाँ, और इसी गणितीय खामी को दूर करने के लिए 1796 में फ्रांसीसी गणितज्ञ लपलास ने कमान संभाली। उन्होंने अपनी निहारिका परिकल्पना या न्यूबुलर हाइपोथेसिस पेश की।
अच्छा, तो लपलास ने उस बेतरतीब टकराव वाली समस्या को कैसे सुलझाया?
लपलास बहुत स्मार्ट थे। उन्होंने समस्या को जड़ से ही हटा दिया। उन्होंने कांट वाली शुरुआत को पूरी तरह से नकार दिया।
मतलब उन्होंने टकराव की बात ही नहीं की?
बिल्कुल नहीं। लपलास ने कहा कि हमें यह मानने की जरूरत ही नहीं है कि कण टकराकर घूमना शुरू हुए। यहां सबसे आकर्षक बात यह है कि उन्होंने मान लिया कि अंतरिक्ष में पहले से ही एक बहुत विशाल, गर्म और तेजी से घूमता हुआ गैस का बादल यानी नेबुला मौजूद था।
ओ, मतलब उन्होंने मान लिया कि मशीन पहले से चालू थी, बस ये बताना था कि उससे उत्पाद कैसे निकला।
सही कहा। और उस पहले से घूमते हुए बादल के आगे का जो सफर था वो पूरी तरह से भौतिकी के नियमों पर आधारित था।
तो आगे क्या हुआ उस घूमते हुए बादल का?
क्योंकि वो नेब्यूला बहुत गर्म था, इसलिए वो अंतरिक्ष के ठंडे वातावरण में धीरे धीरे अपनी गर्मी खोने लगा। और हम जानते हैं कि जब कोई गैस ठंडी होती है तो वो सिकुड़ती है।
हाँ, बिल्कुल।
अब यहाँ कोणीय संवेग का नियम फिर से काम आता है, लेकिन इस बार सही तरीके से। जब कोई घूमती हुई चीज सिकुड़ती है तो उसकी गति बढ़ जाती है।
जैसे कोई आइस स्केटर बर्फ पर गोल गोल घूम रहा हो और जब अपने हाथ अंदर खींचता है तो उसके घूमने की रफ्तार अचानक बहुत तेज हो जाती है।
एकदम परफेक्ट एनालॉजी। तो नेबुला के सिकुड़ने से उसकी घूमने की गति इतनी ज्यादा हो गई कि उसके बाहरी हिस्से पर एक नया बल हावी हो गया, केंद्राप्रसारक बल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स।
ये वही बल है ना जो वॉशिंग मशीन के ड्रम में गीले कपड़ों को बाहर की तरफ धकेलता है जिससे पानी निचोड़ जाता है।
हाँ बिल्कुल, वही बल। तो नेबुला की भूमध्य रेखा के पास ये बाहर धकेलने वाला बल इतना शक्तिशाली हो गया कि वो गुरुत्वाकर्षण से भी ज्यादा हो गया,
जो चीजों को अंदर खींच कर रखता है।
हाँ, तो इसका नतीजा ये हुआ कि नेबुला के बीच वाले हिस्से का जो पदार्थ था वो भारहीन महसूस करने लगा और वो मुख्य बादल से अलग होकर एक छल्ले या रिंग के रूप में बाहर निकल आया।
अरे वाह।
लपलास के मुताबिक ये छल्ला बाद में टूटकर 9 अलग अलग हिस्सों में बट गया और ये 9 हिस्से ठंडे होकर हमारे 9 ग्रहों में बदल गए और जो भारी हिस्सा बीच में बच गया था वो हमारा सूर्य बन गया।
ये कहानी तो एकदम सुव्यवस्थित लगती है, लेकिन मुझे यकीन है कि इसमें भी कुछ कमियां रही होंगी।
कमियां एक या दो नहीं, कई थीं। पहली बात तो ये कि लपलास ने अपनी सुविधानुसार ये मान लिया कि एक गर्म और घूमता हुआ नेबुला पहले से मौजूद था, लेकिन वो गर्मी और गति शुरुआत में कहां से आई?
हाँ, इसका कोई जवाब नहीं था।
और दूसरी आलोचना, वो छल्ला ठीक 9 ही हिस्सों में क्यों टूटा, 8 या 10 में क्यों नहीं? और सबसे बड़ी समस्या ग्रहों की अवस्था को लेकर थी।
अवस्था? हाँ, मतलब लिक्विड या सॉलिड?
हाँ, अगर ग्रह एक गैस के नेब्यूला से बने हैं तो ठोस होने से पहले वो लंबे समय तक तरल यानी लिक्विड अवस्था में रहे होंगे और तरल ग्रह सूर्य के चारों ओर ठीक से कक्षा में घूम नहीं सकते।
तो यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब एक अकेले तारे या नेब्यूला का सिद्धांत सारे सवालों के जवाब नहीं दे पाया तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि शायद इस प्रक्रिया में कोई और भी शामिल था।
बिल्कुल, और यहीं से द्वैतवादी या डुअलिस्टिक सिद्धांतों का जन्म होता है,
जहाँ टू पेरेंट थ्योरी और अंतरिक्ष में तारों की टक्कर मुख्य भूमिका में आ जाती है।
हाँ, 1905 में चैम्बरलिन और मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना आई और फिर 1919 में जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना या टाइडल हाइपोथेसिस।
जेम्स जीन्स का सिद्धांत क्या था?
जेम्स जीन्स ने कहा कि हमारा सूर्य अंतरिक्ष में अकेला नहीं था, एक बहुत बड़ा घुसपैठिया तारा या इंट्रूडिंग स्टार सूर्य की तरफ बढ़ने लगा।
एक तरह से सूर्य के पड़ोस में एक बहुत बड़ा और खतरनाक मेहमान आ गया था।
हाँ, और उसका प्रभाव विनाशकारी था। जैसे पृथ्वी पर चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण समुद्र में लहरें आती हैं, वैसे ही उस घुसपैठिए तारे के भयंकर गुरुत्वाकर्षण ने सूर्य की सतह पर एक ज्वारीय बल पैदा कर दिया।
अच्छा, तो उसने सूर्य को अपनी तरफ खींचा?
हाँ, जैसे जैसे वो तारा करीब आया उसका खिंचाव इतना बढ़ गया कि सूर्य से सिगार के आकार का एक विशालकाय फिलामेंट बाहर की तरफ खींचने लगा।
मतलब ये अंतरिक्ष में किसी हिट एंड रन एक्सीडेंट जैसा था।
एकदम सही। वो तारा तो बिना टकराए आगे बढ़ गया, लेकिन वो फिलामेंट टूटकर सूर्य का चक्कर लगाने लगा और ठंडा होकर ग्रहों में बट गया।
लेकिन अगर जेम्स जीन्स का ये हिट एंड रन मॉडल इतना अच्छा था तो जेफरीज ने 1929 में इसमें एक तीसरा तारा क्यों जोड़ दिया? क्या दो तारे काफी नहीं थे?
जेफरीज को लगा कि सिर्फ पास से गुजरने वाले तारे के खिंचाव से इतना मलबा नहीं निकल सकता जिससे बृहस्पति जैसे विशाल ग्रह बन सकें। उन्हें ज्यादा मलबे की जरूरत थी,
तो उन्होंने क्या किया?
साथी तारे से टकराया था।
ओ, मतलब कोई हिट एंड रन नहीं, बल्कि सीधा आमने सामने का भयानक एक्सीडेंट।
हाँ, ये टक्कर इतनी भयंकर थी कि साथी तारा चकनाचूर हो गया और उसके मलबे से ग्रह बने, जबकि घुसपैठिया तारा गायब हो गया।
सुनने में ये हॉलीवुड की किसी फिल्म जैसा लगता है, लेकिन क्या दो तारों का इस तरह से एक दूसरे के इतने करीब आना या टकराना संभव भी है?
अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो बी लेवन जैसे वैज्ञानिकों ने यही बात उठाई। ब्रह्मांड इतना विशाल है कि तारों का एक दूसरे के इतने करीब आना लगभग असंभव है।
हाँ, स्पेस तो बहुत खाली है।
बिल्कुल, इसे ऐसे समझिए कि पृथ्वी के दो अलग अलग सिरों से दो गोलियां चलाई जाएं और उम्मीद की जाए कि वे हवा में टकराएंगी, इसकी संभावना ना के बराबर है। इसके अलावा ये सिद्धांत सूर्य और ग्रहों के बीच की वास्तविक दूरियों को नहीं समझा सके।
तो अब तारों की टक्कर की संभावना तो न के बराबर हो गई, इसलिए शायद 1943 में रूसी वैज्ञानिक ओटो श्मिट ने एक बिल्कुल अलग नजरिया पेश किया। उन्होंने गैस और धूल पर ध्यान केंद्रित किया, जिसे अंतर तारक धूल परिकल्पना कहते हैं।
हाँ, श्मिट का नजरिया इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि उन्होंने कुछ नया इन्वेंट करने के बजाय उस चीज पर ध्यान दिया जो ब्रह्मांड में बहुत ज्यादा है, गैस और धूल के बादल।
उस समय इसे डार्क मैटर भी कहा जाता था ना?
हाँ, हालांकि ये आज के डार्क मैटर से अलग है। श्मिट के अनुसार हमारी आकाशगंगा का चक्कर लगाते समय सूर्य ने इन गैस और धूल के कणों को अपनी ओर आकर्षित किया।
तो सूर्य एक तरह के विशाल वैक्यूम क्लीनर की तरह काम कर रहा था जो अंतरिक्ष की धूल को अपने चारों ओर इकट्ठा कर रहा था।
सही कहा, ये धूल के कण सूर्य के चारों ओर एक चपटी डिस्क में घूमने लगे। सूर्य की गर्मी ने गैस को डिस्क के किनारों की ओर धकेल दिया
और फिर वो धूल के कण आपस में जुड़ने लगे।
हाँ, इसे अक्रीशन कहते हैं। छोटे कण मिलकर एस्टेरॉयड बने और एस्टेरॉयड मिलकर ग्रह बने।
लेकिन क्या धूल के कण सच में गुरुत्वाकर्षण के बिना इतने बड़े ग्रह बन सकते हैं? और क्या पृथ्वी पर या कहीं और इस डार्क मैटर के सबूत मिले हैं?
यही इस सिद्धांत की सबसे बड़ी आलोचना है। पुरातात्विक खुदाई या चंद्रमा से लाए गए नमूनों में इस डार्क मैटर का कोई सुराग नहीं मिला।
हाँ, कोई सबूत नहीं मिला।
और कई भौतिक शास्त्रियों का मानना है कि ग्रहों के टकराने से टूटकर एस्टेरॉयड बनते हैं, न कि एस्टेरॉयड के शांति से जुड़ने से ग्रह बनते हैं।
और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण भी इतनी दूर बिखरी धूल को पकड़ने के लिए काफी नहीं था।
तो मतलब इन सभी सिद्धांतों ने ग्रहों की बनावट तो समझाने की कोशिश की, लेकिन पूरे ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई, ये सवाल तो वहीं का वहीं था।
बिल्कुल, और इसका जवाब आधुनिक विज्ञान ने दिया, जॉर्ज लेमेत्रे का बिग बैंग सिद्धांत।
हाँ, बिग बैंग।
ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व एक विशाल अग्निपिंड के आकस्मिक और जोरदार विस्फोट से हुई। और इसे साबित कैसे किया गया?
1920 में एडविन हबल ने साबित किया कि ब्रह्मांड आज भी फैल रहा है, आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं। उस वक्त हॉयल ने इसके विकल्प के रूप में एक स्थिर अवस्था संकल्पना या स्टेडी स्टेट थ्योरी भी दी थी, पर उसे मान्यता नहीं मिली।
अच्छा, लेकिन सिद्धांत तो बहुत बन गए, हम आज 21वीं सदी में इसे साबित कैसे कर रहे हैं? कांट और लैपलास के पास तो सिर्फ कागज और कलम थे।
इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है, क्या हम उस विस्फोट को दोहरा सकते हैं? इसका जवाब है लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर या LHC।
वही मशीन जो स्विट्जरलैंड और फ्रांस की सीमा पर जमीन के नीचे बनी है।
हाँ, 27 किलोमीटर लंबी सुरंग में, इसमें प्रकाश की गति से कणों को टकराकर ठीक वैसी ही स्थिति पैदा की गई जैसी 13.7 अरब साल पहले बिग बैंग के समय थी।
मतलब ऊर्जा से नया पदार्थ पैदा हो रहा है।
बिल्कुल, हम लैब में एक मिनी बिग बैंग कर रहे हैं। साथ ही अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1916 में जिन गुरुत्वीय तरंगों की भविष्यवाणी की थी, उनकी पुष्टि ने भी इस सिद्धांत को पुख्ता कर दिया है।
तो इस सब का असल मतलब क्या है? पानी और आग की पौराणिक कहानियों से शुरू होकर नेबुला के छल्लों, टकराते तारों और अंतरिक्ष की धूल से होते हुए इंसान ने बिग बैंग और पार्टिकल कोलाइडर तक का सफर तय किया है।
हाँ, ये दिखाता है कि विज्ञान कभी स्थिर नहीं रहता, हर गलत सिद्धांत एक नए और सही सिद्धांत का रास्ता खोलता है।
बिल्कुल, आज हम लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर से बिग बैंग की पुष्टि कर रहे हैं, लेकिन जरा सोचिए, अगर आज से 200 साल बाद की कोई मशीन या तकनीक ये साबित कर दे कि हमारा ब्रह्मांड किसी और ब्रह्मांड के ब्लैक होल से निकला हुआ सिर्फ एक हिस्सा है।
अरे बाप रे, ये तो पूरी तरह से नजरिया ही बदल देगा,
है ना? जैसे कांट और लैपलास के विचार आज हमें इतिहास लगते हैं, क्या पता कल हमारी आज की सबसे बड़ी वैज्ञानिक सच्चाई भी इतिहास का एक पन्ना मात्र बन जाए।
विज्ञान में कुछ भी अंतिम नहीं होता।
सही कहा। इसलिए अगली बार जब रात के आसमान को देखें तो सोचिएगा कि वो तारे अभी भी हमसे कुछ न कुछ छुपा रहे हैं। ब्रह्मांड के सफर में हमारे लिए हमेशा कुछ नया इंतजार कर रहा होता है।